أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. प्यारे दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो आयत मैंने पवित्र कुरान से पढ़ी है उसी से स्पष्ट है। यानी हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक है ज़कात। ज़कात के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस ईश्वर ने जो इस सृष्टि का खालिक है, उसने अपनी पवित्र पुस्तक में नमाज के बाद ज़कात का ज़िक्र किया है। और हम जब बहुत सी हदीसें देखते हैं तो उसमें भी हमारे मासूमीन ने फरमाया है कि वो व्यक्ति जो ज़कात ना दे वो दीन से बाहर हो गया है, वो मुसलमान नहीं है। तो इसी बात से हम ज़कात के महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात वाकई समझने के योग्य है, हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ज़कात मुसलमानों के ऊपर उनके आर्थिक वाजिबात में से एक वाजिब है। यानी जैसे खुम्स आर्थिक वाजिबात में से, वैसे एक ज़कात आर्थिक वाजिबात में से है जो हर मुसलमान के ऊपर उनकी विशेष शर्तों के साथ वाजिब होता है। ज़कात को अगर हम देखना चाहें तो ज़कात को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली ज़कात वो है जो ज़कात बदन की ज़कात होती है, जो साल में एक बार दी जाती है और वो ईद के दिन, जिसको हम फितरा कहते हैं। और ये उस व्यक्ति के ऊपर वाजिब होता है जो गरीब, फ़कीर और दूसरे ग़ुलाम वगैरह ना हो, जिसकी शर्तें हैं इंशाल्लाह हम आगे किसी कार्यक्रम में आपके सामने विस्तृत रूप से इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद एक दूसरी ज़कात होती है जिसको हम ज़कात माल कहते हैं। ये वो ज़कात है जो कुछ विशेष चीज़ों पर अपनी विशेष शर्तों के साथ वाजिब होती है। अगर हम ज़कात माल को अलग अलग किस्मों में, अलग अलग भागों में बांटना चाहें तो इनको तीन भागों पर बांटा जा सकता है। यानी जिन चीज़ों के ऊपर ये ज़कात वाजिब होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कुछ गल्ले होते हैं जिनके ऊपर ये ज़कात, जिसको हम ज़कात माल कहते हैं, वाजिब होती है। उसके बाद कुछ जानवर हैं जिनके ऊपर ये ज़कात वाजिब होती है। उसका सिक्के हैं कुछ जिनके ऊपर ये ज़कात वाजिब होती है। इनको हम एक एक के बाद एक आपके सामने इंशाल्लाह क्रम अनुसार आपके सामने बयान करेंगे। तो गल्ले या अनाज में जो चीज़ें हैं और जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ गेहूँ है, उसके बाद जौ है, उसके बाद खजूर और उसके बाद किशमिश। ये चार गल्ले या चार अनाज ऐसे हैं कि अगर अपनी विशेष मात्रा पर, निश्चित मात्रा जो बयान की जाएगी इंशाल्लाह आगे, उस तक पहुंच जाएं तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। उसके बाद जानवरों में कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। सबसे पहली चीज़ ऊँट, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है अपनी विशेष शर्तों के साथ। उसके बाद गाय, इसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। उसके बाद भेड़। ये तीन जानवर ऐसे हैं जिनके ऊपर अपनी विशेष शर्तों के साथ ज़कात वाजिब होती है। उसका तीसरी चीज़ जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है वो सिक्के हैं। ये सिक्के सोने या चांदी के हों तो इनके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब जैसे हमने आपके सामने बयान किया कि ज़कात इन तीन चीज़ों पर वाजिब होती है, यानी अनाज के ऊपर और क्या कहते हैं जानवरों के ऊपर, और उसके बाद जो वाजिब होती है सिक्कों के ऊपर। लेकिन हर अनाज या हर स्थिति में वाजिब नहीं होती, इसकी विशेष शर्त है। शर्त ये है कि अनाज या सिक्के या जानवर एक निश्चित मात्रा भर हो गए हों, जिसको हम हद निसाब कहते हैं। अगर इनकी मात्रा हद निसाब या उस निश्चित मात्रा तक पहुंच जाती है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, और अगर नहीं पहुंचती है तो उससे पहले ज़कात इंसान के ऊपर वाजिब नहीं होगी। सवाल ये उठता है, प्रश्न ये है कि वो कौन सी ऐसी मात्रा है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि ज़कात तीन प्रकार की चीज़ों पर वाजिब होती है। इसलिए इस बात का समझना भी आवश्यक है कि हर चीज़ का निसाब या हर चीज़ की वो मात्रा भी एक अलग प्रकार की है। सबसे पहला निसाब जो हम बयान करना चाहें अगर यहाँ पर बयान कर सकते हैं वो ये है कि गल्लों में या अनाज में ये चारों चीज़ें यानी जो बयान की थी गेहूँ जौ और खजूर और किशमिश, इन चारों की मात्रा के लगभग 850 किलो, अगर इन चारों की मात्रा 850 ग्राम तक पहुंच जाती है तो इनके ऊपर ज़कात वाजिब होगा। अगर 850 किलो से कम होती है तो इनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है, जो हमने बयान किया कि गेहूं है, जौ है और खजूर है और किशमिश है, इनकी ज़कात को किस प्रकार हम, इसका मापदंड क्या है, कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसे इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इनकी ज़कात के वाजिब होने के लिए ध्यान इस बात पर दिया जाएगा कि जो इन चारों की फसल की सिंचाई की गई है वो सिंचाई किस प्रकार की गई है। जिस प्रकार सिंचाई होगी उसी प्रकार इनकी ज़कात की मात्रा को भी निर्धारित किया जाएगा। निसाब तो सबका 850 किलो है, लेकिन कितनी मात्रा में ज़कात दी जाएगी ये निर्भर करता है उनकी सिंचाई पर। तो अगर हम सिंचाई को अगर देखना चाहें तो सिंचाई को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली ये हो सकती है कि जो फसल है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे जौ की हो, चाहे खजूर की हो, चाहे किशमिश की, उस फसल को दरिया के पानी से, यानी नहरों से, नदियों से, इस प्रकार के पानी से या बारिश के पानी से सींचा गया हो। अगर बारिश के पानी से या नदी और नहरों और नालों के पानी से सींचा गया है तो उनका निसाब होगा 1/10, यानी हिसाब किया जाएगा जो 1/10 निकलता है वो उसकी ज़कात होगी अगर इनको बारिश के पानी या नदी नहर और नालों के पानी से सींचा गया हो। दूसरी चीज़ यानी दूसरा, अगर सिंचाई का दूसरा तरीका, अगर उनको सींचा गया हो डोल के जरिए, यानी डोल पानी भर भर के लेके गया है इंसान और पानी उससे सिंचाई की, या ट्यूबवेल के ज़रिए से, मोटर के ज़रिए से, इस प्रकार पंप के ज़रिए से, इस प्रकार की चीज़ों से अगर उनकी सिंचाई की गई है, उस खेती की सिंचाई की गई है जिसमें गेहूं जौ या खजूर और किशमिश बोई गई है, अगर इस प्रकार सिंचाई गई है की गई है तो उसकी ज़कात जो होगी, यानी जब 850 किलो मात्रा पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो उसकी ज़कात दी जाएगी वो 1/20 होगी। उसके बाद तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो हमारी फसल थी, इन चारों में से किसी भी चीज़ की फसल हो, उसकी सिंचाई का तरीका ये था कि हमने कुछ समय भर मसलन बारिश के पानी से सिंचाई की है, यानी कुछ सीज़न ऐसा था कि वर्षा ऋतु थी तो बारिश के पानी से उस सिंचाई की गई, और कुछ सीज़न ऐसा जब ट्यूबवेल वगैरह से उसकी सिंचाई की गई है, तो ऐसे में हम उसकी ज़कात किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे फुकहा कहते हैं कि अगर सिंचाई के दो तरीके अपनाए गए हों, एक तरीका मसलन बारिश का या नदी के पानी का हो, दूसरा तरीका डोल या ट्यूबवेल के माध्यम से हो, तो उसकी आधी जो ज़कात होगी, यानी जितनी ज़कात निकलने वाली जो मात्रा आएगी, आधी ज़कात जो होगी 1/10 होगी और आधी ज़कात जो होगी वो 1/20 निकाली जाएगी। ये वो चीज़ थी, वो ज़कात थी, वो मात्रा थी जो गल्लों और अनाजों से संबंधित थी, यानी ये चीज़ों, ये चीज़ें हमने बताई सिर्फ और सिर्फ उसमें मान्य हैं जब गेहूँ जौ खजूर और किशमिश की फसल हो और अपने निसाब तक पहुँच गई हो तो इस प्रकार उनकी ज़कात निकाली जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जिसमें ज़कात वाजिब होती है, हमने बताया जानवर, हमने आपके सामने बताया था जानवर, तीन प्रकार के जानवर ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, सबसे पहले ऊँट, उसके बाद गाय, उसके बाद भेड़। यहाँ पर हम सबसे पहले भेड़ से शुरुआत करेंगे कि भेड़ की ज़कात क्या है, उसकी निश्चित मात्रा क्या है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। ज़कात की पहली निश्चित मात्रा या जिसको निसाब हम कहते हैं भेड़ के लिए, ये है कि वो कम से कम भेड़ 40 हो गई हों, यानी अगर 40 भेड़ें इंसान के पास हो जाती हैं तो पहला निसाब उसका पूरा होता है और उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। उसके बाद 201 भेड़ें होती हैं तो तीन भेड़, उसका 301 होती है तो एहतियात वाजिब ये है कि चार भेड़ दे, उसका 400 भेड़ या उससे ज़्यादा हो जाती हैं तो इंसान की ज़कात का आधार ये होगा कि हर 100 भेड़ों के ऊपर एक भेड़ देगा। ये उस समय होगा जब 400 भेड़ या उससे ज़्यादा हो जाएं, जब ऐसा होता है तो हर 100 भेड़ पर उसके ऊपर एक भेड़ देना वाजिब होगी। इसमें एक बात आप ध्यान रखिए और हर एक को ध्यान रखना चाहिए कि जब इंसान का एक निसाब पूरा हो जाएगा तो उसी एक निसाब को, उसी एक निसाब के आधार पर वो ज़कात देगा, और तब तक वही ज़कात चलेगी जब तक कि वो दूसरे निसाब तक ना पहुंच जाए। जैसे कि हमने आपके सामने बताया था कि मसलन 121 भेड़ों के ऊपर दो ज़कात वाजिब होती है, दो 121 भेड़ों के ऊपर दो भेड़ वाजिब होती है ज़कात की सूरत में। उसके बाद हमने बताया कि 201 भेड़ों के ऊपर तीन गोसपंद वाजिब होती हैं या तीन भेड़े वाजिब होती हैं। तो अगर 121 से लेकर 200 की अवधि हो, यानी 200 की गिनती है, 200 की मात्रा है, और 201 नहीं हुई है, तो तब तक जब तक 201 नहीं हो जाएगी तब तक उसके ऊपर वही दो ही भेड़ वाजिब होंगी, तीसरी भेड़ वाजिब नहीं होगी। तो ये जो हमने आपके सामने बताया, ये भेड़ का निसाब था, भेड़ से संबंधित चीज़ थी, जब आप किस प्रकार हिसाब करेंगे और कैसे आपको ज़कात देनी होगी। उसके बाद दूसरा जानवर जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है वो है गाय। गाय का सबसे पहला निसाब, यानी जब गाय के ऊपर ज़कात वाजिब है, वो ये है कि गाय कम से कम 30 की संख्या में हो जाएं। अगर गाय की संख्या 30 हो जाती हैं तो वो एक बछड़ा देगा। उसका बछड़े की विशेषता ये होगी कि उस बछड़े का 1 साल पूरा हो चुका हो, यानी 30 गाय के ऊपर एक बछड़ा, उस एक बछड़े का 1 साल पूरा हो चुका हो और दूसरा साल उसका आरंभ हो गया हो। ये सबसे छोटा निसाब है गाय का। उसके बाद अगर 40 गाय हो जाएं तो एक मादा बछड़ा दी जाएगी, ऐसी मादा बछड़ा जिसके 2 साल पूरे हो चुके हों, ये 40 गाय के ऊपर। उसके बाद 60 गाय हो जाए, अगर 60 गाय हो जाती हैं तो दो बछड़े दिए जाएंगे, ऐसे दो बछड़े जिनका 1 साल पूरा हो गया हो। उसके बाद अगर 60 से ज़्यादा हो जाए, तो अगर 60 से ज़्यादा गाय हो जाती हैं तो हर 30 के ऊपर एक ऐसा बछड़ा दिया जाएगा जिसके 2 साल पूरे हो गए हों, और हर 40 के ऊपर एक ऐसा बछड़ा दिया जाएगा जिसके 3 साल पूरे हो गए हों। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जितना गाय की संख्या बढ़ती जाएगी उसी में 30-30 और 40-40 के हिसाब से हिसाब किया जाएगा, यानी जैसा बढ़ती जाएगी वैसा हिसाब से हिसाब करना होगा। यहाँ तक कि ऐसा हो कि कोई भी गाय छूटने ना पाए, कम से कम अगर छूटे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो गाय छूटे 9 गाय, अगर 9 से ज़्यादा छूट रही हैं तो उसको 40 या 30 के हिसाब से एडजस्ट करना किया जाएगा, और उसी हिसाब से जो गाय का निसाब निकलेगा उसी हिसाब से वो ज़कात देगा। ये वो चीज़ें थी जो गाय के संबंधित थी और कैसे हम उसको ज़कात देंगे, ये बयान किया हमने आपके सामने। उसके बाद जानवरों में जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा जानवर है और उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, वो ऊँट है। ऊँट में अलग अलग प्रकार की गिनतियाँ हैं, उसी हिसाब से हम उसके निसाब निश्चित करेंगे, उसी हिसाब से उसकी ज़कात दी जाएगी। ऊँट का सबसे पहला निसाब ये है कि जब ऊँट 5 हो जाएँ, अगर जैसे ही 5 ऊँट होते हैं उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी, और उसकी ज़कात यह है कि उसको एक भेड़ दी जाए। 10 ऊँट होते हैं तो 2 भेड़, 15 ऊँट होते हैं 3 भेड़, 20 होते हैं 4 भेड़, 25 होते हैं तो 5 भेड़, 26 अगर हो जाते हैं, यानी 25 तक भेड़ चलती रहेंगी, जैसे ही 26वां ऊँट होता है, जब 26 ऊँट हो जाएं तो वो एक ऊँट देगा, उसके बदले में वो जो ज़कात दी जाएगी वो ऊँट होगी, और ऐसा ऊँट होगा जिसके 2 साल पूरे हो चुके हों। यानी 26 ऊँट जब होते हैं तो उसकी ज़कात होगी एक ऐसा ऊँट जिसके 2 साल पूरे हो गए हों। उसके बाद 26 के बाद 36वें पर ज़कात वाजिब होती है। 36 अगर हो जाए तो एक ऊँट वाजिब होगा ज़कात के उस सूरत में, एक उसकी विशेषता ये होगी कि उसके 2 साल पूरे हो चुके हों और तीसरे साल में प्रवेश कर चुका हो। और फिर उसके बाद 46, अगर 46 ऊँट होते हैं तो उसके ऊपर एक ऊँट वाजिब होगा, उसकी विशेषता ये होगी कि उसके 3 साल पूरे हो चुके हों और चौथे साल में प्रवेश कर चुका हो। उसके बाद 61 ऊँट, जब इंसान के पास 61 ऊँट होते हैं तो भी उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है एक ऊँट की, उसकी विशेषता ये होगी कि 4 साल उस ऊँट के पूरे हो चुके हों और वो 5वें साल में प्रवेश कर चुका हो। उसका 76 ऊँट, जब 76 ऊँट होते हैं तो उसके ऊपर वाजिब होता है कि ज़कात दे, यहाँ पर 2 ऊँट, ऐसे 2 ऊँट जिनके 2 साल पूरे हो चुके हों और वो तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हों। उसके बाद जब 91 ऊँट होते हैं तो इंसान के ऊपर ज़कात वाजिब होती है 2 ऊँट, ऐसे 2 ऊँट जिनके 3 साल पूरे हो चुके हों और वो चौथे साल में प्रवेश कर चुके हों। उसके बाद अंतिम निसाब, जो उसके बाद फिर उसी हिसाब से गिनती की जाएगी, वो ये है कि जब इंसान के पास 121 या उससे ज़्यादा के ऊँट हो जाएं। तो अगर 121 या उससे ज़्यादा के ऊँट हो जाते हैं तो हर 40 ऊँट पर एक ऐसा ऊँट दिया जाएगा जिसके 2 साल पूरे हो चुके हों और वो तीसरे साल में प्रवेश कर चुका हो। तो ये हमने आपके सामने जो भी बयान किया वो निसाब था जो जानवरों से संबंधित था। हमने आज के कार्यक्रम में आपके सामने पहले संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में ये बताया कि ज़कात कहते किसको हैं, उसके बाद ये बताया कि किन किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपके सामने गल्लों या अनाजों के ज़कात से संबंधित बातचीत की। उसके बाद हमने आपके सामने निसाब बताए, आपके सामने जानवरों से संबंधित। इसके बाद भी ज़कात से संबंधित कुछ और मसले रह जाते हैं, जिसको इंशाल्लाह हम आपके सामने अगले कार्यक्रम में बयान करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।